दिन भर तारीख 16 जून दिन बृहस्पतिवार। मैं हूं मोहन लाल शर्मा। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने कहा इस्लामिक स्टेट के चरमपंथी इराक और सीरिया में कर रहे हैं यजीदियों का नरसंहार।
We have done a proper investigation and I can tell you that as former prosecutor.
आखिरकार अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हामिद करजई को क्यों भरोसा है भारत पर? कश्मीरी पंडितों की घर वापसी चाहती है सरकार। शिविरों में बसाकर अलगाववादी कर रहे हैं विरोध, पर पंडित ऐसा रह पाएंगे?
कॉलोनी है ना, ये मुझे कुछ अच्छी नहीं लगती। जैसे पिंजरे में कैद किया हुआ है वो, ऐसे लगता है जैसे उड़ते परिंदे होते हैं ना, उड़ान लेते हैं खुली हवा में, वैसे चाहती हूँ मैं, मतलब वो होना चाहिए।
खबरें और भी, लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार, तृप्ति श्रीवास्तव से। संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार मामलों की जांच करने वाले अधिकारियों ने आरोप लगाया है कि इस्लामिक स्टेट के चरमपंथी इराक और सीरिया में यजीदी समुदाय के लोगों की बड़े पैमाने पर हत्या कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि हत्या करने वाले इस्लामिक स्टेट के चरमपंथी यजीदी पुरुष, महिलाओं और बच्चों को गुलाम बना रहे हैं और उन्हें अपनी पारंपरिक रीति रिवाजों का पालन करने से रोक रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र के जांच अधिकारी चाहते हैं कि इस मामले को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक अदालत में उठाया जाए। रियो ओलंपिक में रूसी खिलाड़ियों को अनुमति देने या नहीं देने के संबंध में वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा की अहम बैठक से ठीक एक दिन पहले रूस की सरकार ने अपने रुख में कुछ नरमी के संकेत दिए हैं। रूस ने अपने खिलाड़ियों के ड्रग टेस्ट कहीं भी कराने के लिए वाडा के साथ सहयोग करने की बात कही है। रूसी खिलाड़ियों ने सरकार के इस रुख पर खुशी जताई है। सभी खिलाड़ी और हमारा पूरा नेतृत्व एक सकारात्मक फैसले का इंतजार कर रहे हैं कि हमें खेलने का अवसर दिया जाएगा, हमारे साथ न्याय होगा, हम बस यही बात सोच रहे हैं, हालांकि चिंता अभी भी बनी हुई है। रूस की ट्रिपल जंपर येकातेरिना कोनेवा के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। भारत सरकार ने सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ के गैर सरकारी संगठन सबरंग ट्रस्ट का लाइसेंस रद्द कर दिया है। सरकार ने इससे पहले पिछले साल सबरंग ट्रस्ट का लाइसेंस स्थगित किया था और विदेशों से मिलने वाली आर्थिक मदद पर स्पष्टीकरण मांगा था। गुजरात दंगों के पीड़ितों के लिए संघर्ष करने वाली तीस्ता सीतलवाड़ पर आरोप है कि उन्होंने विदेशों से आर्थिक मदद लेने के लिए सरकारी नियमों की उपेक्षा की। लीबिया में सेना और चिकित्सा अधिकारियों का कहना है कि पुलिस स्टेशन के बाहर हुए एक धमाके में सरकार समर्थक 10 लड़ाके मारे गए हैं। अधिकारियों का कहना है कि यह धमाका अबू गरेन कस्बे में हुआ, जो लीबिया के तीसरे बड़े शहर मिसराता से दक्षिण में लगभग 120 किलोमीटर दूर है। इस धमाके के पीछे इस्लामिक स्टेट के चरमपंथियों का हाथ माना जा रहा है। पिछले महीने से संयुक्त राष्ट्र समर्थित सरकार ने चरमपंथियों के खिलाफ अपनी कार्रवाई तेज की है। उसके बाद से इलाके में आत्मघाती हमले बढ़े हैं। मिस्र के जांचकर्ताओं का कहना है कि भूमध्य सागर में पिछले महीने दुर्घटनाग्रस्त हुए इजिप्ट एयर के विमान का कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर मिल गया है। जांचकर्ताओं का कहना है कि समुद्र की गहराई में मिला यह वॉइस रिकॉर्डर क्षतिग्रस्त हो चुका है और इसे बहुत सावधानी पूर्वक निकाला गया है ताकि इसमें दर्ज जानकारी को किसी तरह का नुकसान न पहुंचे। पेरिस से काहिरा की उड़ान के दौरान हुई इस दुर्घटना में विमान में सवार सभी 60 लोग मारे गए थे। विवादों से जूझ रही यूरोप की कार कंपनी फॉक्सवैगन ने बिजली से चलने वाली गाड़ियां बनाने की योजना आगे बढ़ाने की घोषणा की है। जर्मन कंपनी फॉक्सवैगन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एमुलर ने कहा है कि कंपनी 2025 तक बिजली से चलने वाली कई गाड़ियां बाजार में उतार देगी। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा की तीसरी सभा दिन भर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मोहन लाल शर्मा। कार्यक्रम की शुरुआत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर से। यजीदी समुदाय हमेशा से चरमपंथी समूह इस्लामिक स्टेट के निशाने पर रहा है। आज संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार जांचकर्ताओं ने इस्लामिक स्टेट पर यजीदी समुदाय का नरसंहार करने का आरोप लगाया। जिनेवा में इस मुद्दे की गंभीरता को देखते हुए एक संवाददाता सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें अधिकारियों ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से यजीदियों की मदद के लिए आगे आने के लिए कहा। 3,000 से भी ज्यादा महिलाएं और बच्चियां आईएस के कब्जे में हैं, जिन्हें सेक्स के लिए बंधक बनाया गया या फिर बेचा जाता है। वर्ष 2014 में आईएस ने यजीदी क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था और आज भी उस क्षेत्र में उनका प्रभाव है। बीबीसी संवाददाताओं का भेजा ब्यौरा सुनिए अंजुम शर्मा से।
संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार जांचकर्ताओं ने पहली बार चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट को इराक और सीरिया में यजीदी समुदाय के जातीय नरसंहार का आरोपी बताया है। सीरिया पर जांच के लिए बने अंतर्राष्ट्रीय आयोग ने कहा कि इस्लामिक स्टेट पुरुषों की हत्या करके, महिलाओं को बंदी बनाकर उनका बलात्कार करके और पारंपरिक विश्वासों के प्रति घृणा पैदा करके पूरे यजीदी समुदाय का विनाश करना चाहता है। सीरिया पर जांच के लिए बने अंतर्राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष पौलो पिनयेरू ने जेनेवा में हुए एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि कैसे आईएस लड़ाकों ने यजीदियों को अपना बंधक बनाया। उन्होंने बताया,
फैमिलीज वेयर सेपरेट बाय फोर्स, मेन एंड बॉयज ओवर 12 हु रिफ्यूज्ड टू कन्वर्ट वेयर किल्ड ऑन द स्पॉट।
परिवारों को बलपूर्वक अलग कर दिया गया है। पुरुषों और 12 साल से ऊपर के जिस किसी लड़के ने उनका विरोध किया तो उन्हें उनकी माँ, पत्नी और बहनों के सामने मार दिया गया। महिलाओं और बच्चियों को जबरन सीरिया और इराक की अलग अलग जगहों पर स्थानांतरित किया गया और उन्हें बेच दिया गया। महिलाएं और बच्चियां आज भी आईएस के कब्जे में हैं। इनमें से ज्यादातर सीरिया में हैं। 9 साल की बच्चियों तक को सेक्स के लिए बंधक बनाया जाता है। आईएस लड़ाकों के हाथों वो बुरी तरह से शारीरिक हिंसा से गुजरती हैं। यदि कोई भागने का प्रयास करता है तो उन्हें बुरी तरह पीटा जाता है। कई बार तो सामूहिक बलात्कार तक किया जाता है। 7 साल से ऊपर के लड़कों को उनकी मां की देखरेख से दूर आईएस अपने कैंप में ले जाता है, जहां उन्हें मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाती है।
पारंपरिक रूप से यजीदी उत्तर पश्चिमी इराक, उत्तर पश्चिमी सीरिया और दक्षिण पूर्वी तुर्की में छोटे छोटे समुदायों में रहते हैं। इस्लामिक स्टेट जैसे चरमपंथी समूह को लगता है कि ये धर्म उमैयद राजवंश के दूसरे खलीफा यजीद इब्न मुआविया से निकला है, जबकि शोध बताते हैं कि यजीदियों का संबंध फारसी भाषा के इजीद शब्द से है, जिसके मायने हैं फरिश्ता या देवता। कई रिपोर्टों के मुताबिक यजीदियों पर अत्याचार उनके नाम की वजह से हुई गलतफहमी के कारण शुरू हुआ है, जो आज तक जारी है। युगोस्लाविया और रवांडा के लिए अंतर्राष्ट्रीय अपराध अधिकरण की मुख्य अभियोक्ता रहीं कार्ला डेल पोंटे ने बताया कि उनके पास यजीदियों पर अपराध करने वालों के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं। उन्होंने कहा,
We have done a proper investigation and I can tell you that as former prosecutor I would be happy.
हमने अच्छी तरह से जांच की है और मैं पूर्व मुख्य अभियोक्ता होने के नाते बता सकती हूँ कि मुझे अपराध सिद्धि के लिए कागजात तैयार करने में खुशी होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि हम पर्याप्त सबूत इकट्ठा करने में सक्षम रहे और हमने विधि अनुसार उनकी समीक्षा की। हमें उम्मीद है कि सुरक्षा परिषद भविष्य में इन्हें रोड मैप के तौर पर इस्तेमाल करेगी, क्योंकि ये पीड़ितों को न्याय दिलाने का समय है।
कार्ला डेल पोंटे की तरह विशेषज्ञों का ऐसा मानना है कि यजीदियों को न्याय दिलाने के लिए अब तेजी से प्रयास करने होंगे। सिंजर पर हमला हुए लगभग 2 साल हो चुके हैं और अभी तक वहाँ के लोगों के लिए कुछ नहीं किया गया है। यजीदी महिलाओं और बच्चों के लिए आईएस के कब्जे से निकालने के लिए कोई विशेष बचाव अभियान अभी तक नहीं चलाया गया है। यजीदियों को निश्चित रूप से मदद की जरूरत है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इसके लिए कठोर कदम उठाने ही होंगे।
संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार जांचकर्ताओं का कहना है कि इस्लामिक स्टेट के चरमपंथी इराक और सीरिया में यजीदियों का भारी पैमाने पर नरसंहार कर रहे हैं।
दिन भर शॉर्टवेव 41, 31 और 25 मीटर बैंड यानी 7,565, 9,460, 9,510 और 11,795 किलोहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 1,413 किलोहर्ट्ज़ पर।
आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी सेवा की तीसरी सभा दिन भर। चर्चा अफगानिस्तान की करते हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय का कहना है कि अफगानिस्तान के साथ सीमा मुद्दे पर बातचीत जारी है, लेकिन पाकिस्तान दोनों देशों के बीच सीमा पर सभी मार्गों पर गेट बनाएगा। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का कहना है कि पाकिस्तान किसी भी सूरत में समझौता नहीं करेगा, क्योंकि ये देश की सुरक्षा का मामला है। पिछले रविवार की रात पाकिस्तान और अफगान बलों के बीच सीमा पर गेट के निर्माण पर संघर्ष शुरू हुआ, जिसमें एक पाकिस्तानी सैन्य अधिकारी और अफगान सैनिक मारे गए थे। कई सुरक्षा अधिकारी, नागरिक घायल हुए। सीमा पर संघर्ष के चलते पाकिस्तान से व्यापार सहित सभी प्रकार की आवाजाही स्थगित है। बीबीसी उर्दू संवाददाता शफी नकी जामाई ने लंदन में बीबीसी दफ्तर पहुंचे अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हामिद करजई से बात की। उन्होंने पाकिस्तान और अफगानिस्तान सीमा मुद्दे पर तो बात भी की, लेकिन भारत के साथ रिश्तों पर बात की। हामिद करजई का कहना था कि भारत अफगानिस्तान का सच्चा दोस्त है। आपको सुनाते हैं कि उन्होंने क्या क्या कहा और क्यों भारत को पाकिस्तान के मुकाबले अफगानिस्तान वरीयता देता है।
हामिद करजई साहब, वो अफगानिस्तान इंडिया और ईरान का जो एक अलायंस बन रहा है, क्या बेहतर न होता कि इस अलायंस में तीन के बजाय चार होते और इसमें चौथा फरीक पाकिस्तान भी होता?
खुशामदीद, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल आइए, पाकिस्तान को आना चाहिए और ये चार जानबा वो अगर हो जाए तो हम बहुत खुशी से मांग लेंगे। पाकिस्तान नहीं मानता, पाकिस्तान कहता है कि भारत की इंडिया के अफगानिस्तान के साथ कोई ताल्लुक ना हो, कोई ट्रेड ना हो, कोई तजारत ना हो और इंडिया से अफगानिस्तान को और फिर सेंट्रल एशिया को इंडिया को एक्सेस ना हो, ये तो हो नहीं सकता। पाकिस्तान ये मान ले कि इंडिया के एक्सेस हो अफगानिस्तान को और फिर सेंट्रल एशिया को अफगानिस्तान को, हम बहुत तेज़ी से पाकिस्तान के साथ चार जानबा करेंगे और इंडिया भी, मैं मुतमइन हूँ, श्योर हूँ, इसमें खुश होगा और आएंगे।
इंडिया का अफगानिस्तान में रोल किस किस्म का है? पाकिस्तान इंडिया के अफगानिस्तान में रोल पर चींबची होता है,
होता है बेवजह। यही बात है हमारे दरमियान जो हम नहीं समझते। अगर पाकिस्तान ये मानता है कि अफगानिस्तान एक मुस्तकिल सॉवरेंटी है, पाकिस्तान खुद इंडिया के साथ बातचीत करती है, दिल्ली जाते हैं आपके प्राइम मिनिस्टर साहब और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को दावत देते हैं पाकिस्तान आने को, बड़ी खुशामदीद कहते हैं, हम क्यों ना करें? अगर आपको पाकिस्तान की चाइना के साथ दोस्ती है, हम क्यों ना करें? अगर पाकिस्तान की अमेरिका के साथ दोस्ती है, हम क्यों ना करें? इसी बात पर हम बहुत नाराज़ होते हैं। पाकिस्तान आए और हमको कह दे कि आप भारत के साथ ताल्लुकात ना रख दें, क्यों ना रख दें? भारत हमको पैसे देते हैं बहुत बड़े, वो भारत कोई ज़रूरतमंद वो नहीं है, भारत भी एक फ़कीर लोग है, उस फ़कीर दौलत ने अफगानिस्तान को अपनी फ़कीरी से इतना माला माल कर दिया, इतना माला माल कर दिया किसी और ने नहीं किया, पैसे दिए रिकन्स्ट्रक्शन के लिए, एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए और हमारे साथ दिल से दोस्ती करते हैं। हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान भी इसी तरह हमारे साथ दिल से दोस्ती करे और हम हज़ार बार दिल से दोस्ती पाकिस्तान के साथ
मैंने
करेंगे।
बहुत ध्यान से सुनी आपकी बात जो आपने भारत के लिए कही।
आपको बता दें कि हामिद करजई वर्तमान राष्ट्रपति अशरफ गनी से पहले अफगानिस्तान के राष्ट्रपति थे और वो भारत को किस तरह से देखते हैं वो अपने इस इंटरव्यू में उन्होंने बातें बताई।
खबर सच है अगर बीबीसी पर है।
रुख भारत का करते हैं। आजकल उत्तर प्रदेश के शामली जिले का कैराना कस्बा चर्चा में है और चर्चा इसलिए कि बीजेपी का आरोप है कि वहां से हिंदुओं का पलायन हुआ, वो भी मुसलमानों के डर के चलते। पार्टी सांसद हुकुम सिंह ने एक सूची जारी की थी जिस पर बवाल हुआ। कल बीजेपी का एक दल वहां जांच के लिए पहुंचा था जिसका विरोध हुआ। आज विपक्षी दलों का एक दल कैराना गया है। इस पलायन की तुलना कश्मीरी पंडितों के पलायन से की गई थी, इसलिए सभी दलों की राजनीति गर्म है और इधर कश्मीर में पंडितों की वापसी की योजना की चर्चा हो रही है। भारत प्रशासित कश्मीर में बीजेपी और पीडीपी की गठबंधन सरकार ने कश्मीरी पंडितों को वापस घाटी में बसाने का वादा किया है। सरकार का कहना है कि लौटने वाले पंडितों को बसाने के लिए अलग से कॉलोनी बनाई जाएगी जहां वो सुरक्षित रह सकेंगे, मगर कश्मीरी अलगाववादी गुट और घाटी में रह रहे पंडित इस प्रस्ताव से खुश नहीं है। हमारी सहयोगी गीता पांडे ने हाल ही में कश्मीर का दौरा किया, सुनिए उनकी ये रिपोर्ट।
किरण कॉल 26 सालों के बाद आज श्रीनगर लौटी हैं। उनके साथ हैं उनकी बेटी वर्षा जो सिर्फ 15 दिनों की थी जब कॉल परिवार अप्रैल 1990 में कश्मीर से अपनी जान बचाकर भागने पर मजबूर हुआ। किरण आज भी उस वक्त को भुला नहीं पाती।
हालत गई खराब रहा
शाम थी उस दिन टेररिस्ट आ गए तो उन्होंने घेरा कर दिया आगे पीछे घर के पूरे आगे पीछे घेरा कर दिया सबको। तो अंकल बैठे हुए थे तो उनको ले गए उठा के। उन्होंने बोला कि हमें आपसे कुछ पूछना है, सिर्फ बात करनी है। तो बाकी भी डर गए। उन्होंने बोला आप कहाँ इनको ले जा रहे हो? उन्होंने बोला नहीं बस हम दो मिनट से बात करेंगे, तब तक आप चुप करके बैठ जाना, अगर आपने शोर किया तो फिर आपको मार देंगे हम लोग। ये लोग अंदर ही बैठे थे, इनको लगा वो वापस आ जाएगा। फिर थोड़ी सुबह हुई 4-5 बजे तो इनके कोई पड़ोसी थे वो बाहर निकले, उन्होंने देखा कि ये लटके हुए हैं पेड़ पे। वो आके उन्होंने उनको बोला कि ऐसे से हुआ है बाहर।
1980 के दशक के आखिरी दौर में कश्मीर घाटी में मुसलमान चरमपंथियों का बोलबाला था जो भारत से आजादी की मांग कर रहे थे। वे अक्सर हिंदू पंडितों को अपना शिकार बनाते थे। उस वक्त हमलों और धमकियों के डर से 3.5 लाख कश्मीरी पंडितों ने घाटी छोड़कर जम्मू और देश के दूसरे हिस्सों में शरण ली। आज घाटी में सिर्फ 2,764 हिंदू बचे हैं। वर्षा बताती हैं,
हम सोच रहे थे हमें वापस आना है दोबारा, कि हम जा रहे थे तो हमें लगा हम 2-3 महीने रह के दोबारा अपने घर वापस आ जाएंगे, तब ये माहौल ठीक हो जाएगा। और हम लोग सब चले गए, ट्रक वगैरह की थी तो चले गए, हम जम्मू चले गए। इनको लगा हम वापस आएंगे, फिर जब हालात, ये भी घबरा गए उसके बाद, इन्होंने सोचा अगर वापस आएंगे तो ये लोग हमें छोड़ेंगे नहीं, तो उसी वजह से हम लोग फिर दोबारा वापस आए नहीं।
फिलहाल वर्षा और मां किरण कुछ दिनों के लिए अपने पुराने पड़ोसियों से मिलने आई हैं। पिछले दिनों बीजेपी और पीडीपी की गठबंधन सरकार ने कश्मीरी पंडितों को वापस घाटी में लाने का वादा किया है। अधिकारियों का कहना है कि वे वापस आने वाले पंडितों के लिए कैंप बनाएंगे जहां वे सुरक्षित रह सकेंगे। वर्षा कहती हैं इससे उनकी उम्मीदें एक बार फिर से जागी हैं कि वे दोबारा घाटी लौट सकती हैं।
हाँ, अगर हो सकता है तो हम आएंगे, कि अब हालात ठीक हैं, हम भी कहते हैं चलो अगर सेफ्टी मिल रही है तो हम आएंगे और बैठेंगे, और जॉब वगैरह का होगा तो अच्छी बात है हमारे लिए, हमारी भी लाइफ बन जाएगी थोड़ी।
मगर इस योजना से कश्मीरी अलगाववादी सहमत नहीं है। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया है कि वो फलस्तीन में इजराइल जैसे कैंप बनाने की कोशिश कर रही हैं। आलोचना के बाद मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा कि वे कश्मीरी पंडितों को सिर्फ तब तक रहने के लिए जगह देने की बात कर रही हैं जब तक वे अपना घर ना तैयार कर लें। लेकिन घाटी में बहुत से लोग कहते हैं कि उन्हें मुख्यमंत्री पर भरोसा नहीं रहा। अधिकारियों के लिए सबसे बड़ी समस्या यह भी हो गई है कि 8 साल बाद कश्मीरी अलगाववादी नेता मीरवाइज उमर फारूक, यासीन मलिक और सैयद अली शाह गिलानी फिर एक बार एकजुट हो गए हैं। मीरवाइज फारूक ने बीबीसी को बताया,
पूरा जम्मू कश्मीर और यहाँ के लोग इस बात के हक में हैं कि कश्मीरी पंडित बरादरी वापस अपने घरों को आए, और हम ही महसूस करते हैं कि इनका जो मसला है ये एक इंसानी मसला है, एक मानवता का इशू है। तो ज़रूरी ये है कि हम इकट्ठे रहें, न कि नफरत और दूरी की जो दीवारें हैं उनको खड़ा किया जा सके। अगर सारा आइडिया ये है कि कश्मीरी पंडित यहाँ पर आएंगे और उनको अलग रखा जाएगा, तो मैं समझता हूँ कि उससे और भी ज़्यादा, मैं कहूँगा कि दूरियाँ और आपस में जो प्यार मोहब्बत है वो बढ़ेगा नहीं बल्कि घटेगा।
आश्चर्य की बात यह है कि कई पंडित भी मीरवाइज की बात से सहमत हैं। 65 साल की रिटायर्ड शिक्षिका ललिता धर 1989 में घाटी छोड़कर जम्मू गई थी। 18 महीने पहले वे वापस लौटी और तब से हिंदुओं के लिए सरकार की ओर से बनाए गए शेखपुरा कैंप में रह रही हैं। मगर उन्हें कैंप की जिंदगी बिल्कुल रास नहीं आ रही।
मैं चाहती हूँ कि हमें यहाँ पर मिलजुल के रहना चाहिए। ये जो कॉलोनी है ना, ये मुझे कुछ अच्छी नहीं लगती। ये ऐसे लगता है कि एक जैसे पिंजरे में मतलब कैद किया हुआ है, लेकिन उसमें जो हमें मिलजुल के है ना, वो ऐसे लगता है जैसे उड़ते परिंदे होते हैं ना, उड़ान लेते हैं खुली हवा में, वैसे चाहती हूँ मैं, मतलब वो होना चाहिए। चाहे वो हमारे घर नहीं है लेकिन हमें वहीं पे जगह दें, मिलजुल के रहें, वो मैं ज्यादा पसंद करती हूँ। हम चाहते हैं कि इकट्ठे रहें, मिलजुल के रहें, वो सबसे अच्छी बात।
पिछले कुछ सालों में चरमपंथ की घटनाओं में कमी आई है। कश्मीर में हलचल है। गर्मी के मौसम में लाखों भारतीय पर्यटक घाटी की सैर करने आते हैं। अब सवाल ये है कि जो लाखों की संख्या में पंडित घाटी छोड़ने पर मजबूर हो गए थे, वे क्या वापस कश्मीर की वादियों में अपना घर बना पाएंगे? गीता पांडे, बीबीसी, श्रीनगर।
कश्मीरी पंडितों को वापस घाटी में बसाने की जो सरकारी योजना है वो कितनी कारगर होगी, और जो लोग इस योजना का विरोध कर रहे हैं उनके सवालों के जवाब क्या हैं? हमारे सहयोगी माजिद जहांगीर ने बात की जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री निर्मल सिंह से।
पंडितों के लिए जो टाउनशिप्स की बात हो रही है, क्या वो ट्रांजिट कैंप होंगे या रिहैबिलिटेशन सेंटर होंगे? वो
कश्मीरी पंडित जो 90% के लिए होंगे, मेजोरिटी कश्मीरी पंडित है और उसमें सिख भी है, उसमें बाकी हिंदू भी है जो डोगरी और पंजाबी स्पीकिंग, उन सभी के लिए है ये, क्योंकि आज की डेट में ये लोग अपने घरों में जाके रूरल एरिया में जाके सुरक्षा की वहाँ समस्या है, जिस कारण तो ट्रांजिट कैंप के तौर पर एक इस प्रकार की एकोमोडेशन बनेगी। जो 2,000 करोड़ रुपया जो भाई मोदी ने प्राइम मिनिस्टर पैकेज दिया उसके वजह से ये बनेगी और ये वहां रहेंगे, और जब हालात ठीक होंगे तो ये अपने
कई सारे क्वार्टर्स जम्मू कश्मीर में अलगाववादी हैं, अपोजिशन पार्टी है या दूसरे हलके हैं, तो इस तरह के मुंह को अपोज कर रहे हैं, तो उस पर आप क्या कहेंगे?
ये लोग जो है जम्मू कश्मीर कर रहे हैं, तमिल लाइन पर पोलराइज करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कश्मीरी पंडित का नाम लेते हुए ये कह रहे हैं, एक तरफ ये कहते हैं कि वो कश्मीरी जो सोसाइटी है, कश्मीर सोसाइटी है, उसका पार्ट है और उनको वापस आना चाहिए। दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि उनको नहीं आने देना चाहिए, इकट्ठे नहीं बसने देना चाहिए। ये किस्म का पोलराइज करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी भी कई अलगाववादी हैं, कई लोग हैं देशवादी नेशनल कांग्रेस के थानों से लेते हैं कश्मीर के, वो अभी अपने घरों में नहीं जा सकते। काफी कुछ ठीक हुआ है लेकिन उसके बावजूद भी अपनी टेंशन रहती है। तो एक तरफ तो ये कहते हैं कि इनको आना चाहिए, दूसरे कहते नहीं, ये अपोज कर रहे हैं। उनके पास क्या सुझाव है इसके लिए? सुझाव क्या है कि उनको अपने जहां जहां भी कुपवाड़ा में, बारामूला में, पुलवामा में, शोपिया में जाए और वहां पर जो एक उग्रवादियों का शिकार बने और फिर वो जो आना चाहते वो बुड़के नहीं आए, क्या इनका ये मकसूद है क्या?
अच्छा सर, ये तो अलगाववादियों की बात हो गई, तो हम नेशनलिस्ट पार्टीज की बात करेंगे, जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस है, कांग्रेस है, तो वो भी इस मुख का अपोज कर रही है।
ये कितनी बदकिस्मती है कि जो लोग साल पहले, डेढ़ साल पहले सरकार में थे और वो सारी यही बातें करते थे।
जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री निर्मल सिंह से बात कर रहे थे हमारे सहयोगी माजिद जहांगीर। और अब कार्यक्रम में बात करेंगे आपकी चिट्ठियों की।
आपकी राय। नमस्कार, स्वीकार कीजिए राजेश जोशी का। और आज मेरे साथ हैं
दिव्या आर्य।
दिव्या आर्य, जिनको आप उम्मीद नहीं कर रहे होंगे कि चिट्ठियां लेके आपकी वो आएंगी, क्योंकि वो तो रिपोर्टें लेके आती हैं, लेकिन आज उनके हाथ में चिट्ठियां हैं और ईमेल हैं। दिव्या, कहां से शुरुआत करेंगी?
पहली चिट्ठी लखीमपुर खीरी से विनीत कुमार ने ईमेल भेजा है और लिखते हैं कि माँ के बीमार होने के कारण लगभग 6 महीने से बीबीसी हिंदी को नहीं सुन सके और ना ही मेल कर सके, पर 7 जून उनके लिए यादगार दिन बन गया और एक ऐसी याद जिसे वो कभी भुला नहीं पाएंगे। जिन अदृश्य लोगों को वो रेडियो से सुनते थे, उनसे उन्हें साक्षात मिलने का सौभाग्य मिला।
यानी 7 जून को वो यहाँ दिल्ली दफ्तर में हमारे आए थे और ये उनके लिए यादगार दिन बन गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ऐसे ही चिट्ठियां लिखते रहें और अपनी यादें, अपनी बातें हम तक पहुंचाते रहें।
अगली चिट्ठी सेवा कुटीर किंग्सवे कैंप से शिवम सोनी, जो एक शिकायत कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि इंडिया बोल का स्वरूप निरंतर पक्षपातपूर्ण होता जा रहा है, क्योंकि यहाँ मात्र एक पक्षीय विचारों, वार्ताओं और वक्ताओं को स्थान प्राप्त होता है।
इन्होंने कोई उदाहरण दिया है इसका?
उन्होंने कोई उदाहरण नहीं दिया, बल्कि अपनी बात को ही और बलपूर्वक रखा है। उन्होंने कहा कि फिल्म निर्माता व निर्देशक मात्र अपने व्यावसायिक हित के तहत फिल्में निर्मित करते हैं, इसलिए उन पर शिकंजा करना आवश्यक है।
जी, मैं समझ गया। ये कह रहे हैं जो इस बार इंडिया बोल प्रसारित हुआ, उड़ता पंजाब फिल्म को लेकर के जो विवाद हुआ है, उसके सिलसिले में कह रहे हैं। लेकिन अगर आपने कार्यक्रम गौर से सुना हो तो हमने तिग्मांशु धूलिया, जो फिल्म निर्देशक हैं, उनसे बात की। उनकी पूरी तरह से राय ऐसा नहीं था कि सिर्फ फिल्म प्रमाणन बोर्ड की वो आलोचना ही कर रहे थे, ऐसा नहीं था। और हमने भी अपनी तरफ से, बहुत सारे श्रोताओं ने भी दोनों पक्ष रखने की कोशिश की थी, लेकिन अगर आपको ऐसा लगा है तो हम भविष्य में ध्यान रखेंगे कि आप तक पूरी तरह से संतुलित बात पहुंचे।
ग्राम अलहपुर, जिला कासगंज, उत्तर प्रदेश से सौरभ कुमार ने लिखा है कि वो हमारे नियमित श्रोता हैं और 12वीं के छात्र हैं। कहते हैं, आपके कार्यक्रमों में मुझे दुनिया जहान और विवेचना बेहद पसंद है। दिव्या आर्य जी की रिपोर्टिंग बहुत अच्छी होती है।
बहुत खुश हो गई है दिव्या आर्य जी।
बहुत बहुत खास शुक्रिया सौरभ साहब आपको।
और ये देखिए, ये इस बात को ध्यान इस बात पर दीजिए कि बहुत सारे जो अभी नए नए छात्र हैं, 12वीं में पढ़ने वाले, वो लोग हमें लिखने लगे हैं, उनको ये कार्यक्रम पसंद आ रहे हैं, तो हमारे श्रोताओं की एक नई पीढ़ी तैयार हो रही है।
और जो आपने छात्रों की बात की राजेश जी, तो इस बार हमारे पास 2 ईमेल जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से आई है। लिखने वाले हैं योगेश कुमार यादव और अविनाश शाही। इन दोनों को IAS परीक्षा में सफल हुए नेत्रहीन छात्र राजेश सिंह का इंटरव्यू बेहद पसंद आया। योगेश कुमार लिखते हैं कि इंटरव्यू की शुरुआत बहुत अच्छी थी, लेकिन सिर्फ विजेताओं का ही इतिहास लिखा जाता है, इसलिए आप विकलांगता के आधार पर भेदभाव, दमन और अलगाव में डालने की प्रवृत्तियों पर भी रोशनी डालें।
आपकी बात बिल्कुल जायज है यादव साहब। कई बार ऐसा होता है कि हम सिर्फ प्रेरणा लेने के लिए सफल लोगों के बारे में बात करते हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि जो सफल नहीं हुए वो हमारी नज़रों से दूर हैं। हम कई बार इस तरह की खबरें करते रहते हैं।
दूसरी चिट्ठी अविनाश शाही की है, वो भी JNU से है, साबरमती हॉस्टल में रहते हैं। उन्होंने कहा कि राजेश सिंह का इंटरव्यू बहुत प्रेरणादायक था। बताते हैं, मैं भी नेत्रहीन हूँ और आपको बताना चाहता हूँ कि राजेश सिंह और मैं कावेरी छात्रावास में 6 महीने तक एक साथ पढ़े।
अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। देखिए, रेडियो के जरिए आप फिर से एक दूसरे को याद कर रहे हैं, बहुत बहुत हमें तो बहुत खुशी हुई है। आप अविनाश जी लिखते रहें।
और अब ईमेल से बढ़ें एक चिट्ठी की तरफ जो आई है बिहार के भोजपुर से। नीतीश कुमार यादव लिखते हैं कि चलो रियो रिहान फजल द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन विवेचना को बंद करना अच्छा नहीं लग रहा।
तो देखिए, हम कई बार हम लालची हो जाते हैं, तो कई बार हमारे श्रोता भी चाहते हैं कि उनको ये भी मिले वो भी मिले। अब रिहान फजल तो एक ही हैं, या तो वो चलो रियो करेंगे या फिर वो विवेचना करेंगे।
पर इसीलिए उन्होंने एक सुझाव भी लिख भेजा है अपनी चिट्ठी में कि विवेचना को जब दोबारा शुरू करें तो निखिल रंजन को उसे प्रस्तुत करने का।
अच्छा जी हाँ, तो जरूर आपकी बात उन तक पहुँचा दी जाएगी। अब मुझे लगता है दिव्या जी हमारे पास समय बहुत कम बचा है, तो श्रोताओं से ये कहते हुए मैं विदा लेना चाहता हूँ कि हमारे जितने नए श्रोता हैं वो खामोश ना रहें, चिट्ठियाँ लिखें, क्योंकि आपकी चिट्ठी आती है तो हमें पता चलता है कि हम क्या सही कर रहे हैं क्या गलत कर रहे हैं। इसके साथ ही कह दें
नमस्कार।
तो श्रोताओं, आपने अपनी चिट्ठियाँ सुन ली, और जो हमारे bbchindi.com पर बड़ी खबर है वो ये है कि जानी मानी सामाजिक कार्यकर्ता और गुजरात के दंगा पीड़ितों के बीच काम करने वाली तीस्ता सीतल वाट की मुसीबतें बढ़ गई हैं। और समाचार एजेंसियों के मुताबिक केंद्र सरकार ने तीस्ता के NGO सबरंग ट्रस्ट का FCRA लाइसेंस रद्द कर दिया है। आपको बता दें कि ये वो कानून है जिसके तहत भारतीय संस्थाएं विदेशों से आर्थिक सहायता नियम कानून के तहत लेती हैं। पिछले साल FCRA के नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में गृह मंत्रालय ने ट्रस्ट के रजिस्ट्रेशन को 10 सितंबर 2015 से 6 महीने के लिए निलंबित कर दिया था। इस पूरी खबर को पढ़ने के लिए bbchindi.com पर आइए। और अब कार्यक्रम में खेल समाचार। रजत चान्ना मौजूद है। रजत
जी, भारतीय हॉकी टीम चैंपियंस ट्रॉफी में अपने अंतिम पूल मैच में आज ऑस्ट्रेलिया से भिड़ेगी। भारतीय टीम को अगर इस मैच में जीत मिलती है तो वो पहली बार फाइनल में पहुंच जाएगी। ऑस्ट्रेलिया की टीम पहले ही फाइनल में जगह बना चुकी है। भारतीय टीम का चैंपियंस ट्रॉफी में अभी तक प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है। उन्होंने ब्रिटेन और दक्षिण कोरिया को अपने शानदार खेल के बलबूते मात दी। वहीं मजबूत जर्मनी के खिलाफ मैच ड्रॉ करवाने में वो सफल रहे। ऑस्ट्रेलिया की टीम इस समय 4 मैचों में 10 अंकों के साथ शीर्ष स्थान पर है। वहीं भारत अंक तालिका में 7 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर है। पूर्व ओलंपियन हरभिंदर सिंह ने बताया कि क्या रणनीति होनी चाहिए भारतीय टीम की आज के मैच के लिए।
देखिए, पहले सबसे तो हमारी डिफेंस को काफी साउंड होना पड़ेगा, मैन टू मैन मार्किंग करनी पड़ेगी, उनको डी में जो है चांसेस कम मिलने चाहिए, पेनल्टी कारण कम देने चाहिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी टीम है जो इस वक्त टूर्नामेंट जो टीमें खेल रही है सबसे मैच्योर साइड है, और उनके जो बाकी के मैचों के रिजल्ट बहुत अच्छे रहे हैं, और अभी तक भी इवन इस टूर्नामेंट के अलावा भी जहाँ भी खेले हैं वो अभी तक हमेशा इंडिया को जीते हैं। लेकिन हमें ये मैच बड़ा संभल के खेलना पड़ेगा, और इस मैच पे डिपेंड करता है कि हम लोग फाइनल खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। तो अभी ऐसी बात नहीं, जैसे हम लोग जर्मनी के साथ खेले, ग्रेट ब्रिटेन को हमने जीता, तो बेल्जियम के साथ अच्छा मैच हुआ, तो इस अगर वही स्पिरिट्स के साथ खेलते हैं तो ये मैच भी जीत सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं।
वहीं वेस्ट इंडीज के खिलाफ कल खेले गए एक दिवसीय मैच में दक्षिण कोरिया को 140 रनों से जीत मिली। जीत के साथ हाशिए मामला ने रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन किया। दक्षिण अफ्रीका के लिए आमला ने 99 गेंदों में 110 रन बनाए, और दक्षिण अफ्रीका ने 4 विकेट के नुकसान पर 343 रन का स्कोर खड़ा किया। जवाब में वेस्ट इंडीज की टीम 38 ओवर में 204 रन पर ही आउट हो गई। ताहिर ने 9 ओवर में 45 रन देकर 7 विकेट लिए, जो एक दिवसीय क्रिकेट के इतिहास में किसी दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाज का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। यही नहीं, अपने 23वें शतक के साथ आमला ने विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ दिया। आमला को 23 शतक के लिए 132 पारी खेलनी पड़ी, जबकि विश्व के बेहतरीन बल्लेबाज विराट कोहली ने 157 पारी खेली है।
बहुत बहुत शुक्रिया रजत चान्ना। और इससे पहले कि कार्यक्रम में हम आपसे विदा लें, मुख्य समाचार एक बार फिर से सुन लेते हैं।
बीबीसी समाचार। संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार मामलों की जांच करने वाले अधिकारियों ने आरोप लगाया है कि इस्लामिक स्टेट के चरमपंथी इराक और सीरिया में यजीदी समुदाय के लोगों की बड़े पैमाने पर हत्या कर रहे हैं। रियो ओलंपिक में रूसी खिलाड़ियों को अनुमति देने या नहीं देने के संबंध में वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा की अहम बैठक से ठीक एक दिन पहले रूस की सरकार ने अपने खिलाड़ियों के ड्रग टेस्ट कहीं भी कराने के लिए वाडा के साथ सहयोग करने की बात कही है। विदेशों से आर्थिक मदद लेने के लिए सरकारी नियमों की कथित उपेक्षा के आरोप में भारत सरकार ने सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ के गैर सरकारी संगठन सबरंग ट्रस्ट का लाइसेंस रद्द कर दिया है। लीबिया में सेना और चिकित्सा अधिकारियों का कहना है कि पुलिस स्टेशन के बाहर हुए एक धमाके में सरकार समर्थक 10 लड़ाके मारे गए हैं। मिस्र के जांचकर्ताओं का कहना है कि भूमध्य सागर में पिछले महीने दुर्घटनाग्रस्त हुए इजिप्ट एयर के विमान का कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर मिल गया है।
तो बीबीसी हिंदी सेवा की तीसरी सभा दिनभर के इस अंक में बस इतना ही। स्टूडियो संभाल रहे थे हेमंत कुशवाहा। घटना चक्र लेकर हम फिर से हाजिर होने वाले हैं। मोहनलाल शर्मा को विदा दें। नमस्कार।